सन 1965 की बात है। एक व्यक्ति कड़ी धूप में कहीं जा रहा था। उसने देखा कि एक दुकान में कांच की बोतलों में कुछ बेचने के लिए रखा था। उस व्यक्ति को प्यास भी लगी थी, तो उन बोतलों को देखकर उसे शरबत पीने का मन हुआ। पर यह कैसा शरबत था, बिना रंग का? जब उसने दुकान के मालिक से पूछा कि उन बोतलों में क्या है, तो दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये पानी की बोतलें हैं। ये जवाब सुनकर वो व्यक्ति हंस पड़ा और कहा, भारत में पानी भी कोई खरीदने वाली चीज है? उन बोतलों में बड़े अक्षरों में लिखा था, फेलिस बिस्लेरी। आज का आलम यह है कि पानी की बोतल में बिस्लेरी ना लिखा हो तो उसकी शुद्धता का प्रमाण नहीं मिलता। ये नाम आज हमारे जहन में इस तरह बस गया है कि जब पानी की बोतल खरीदनी होती है तो हम पानी की बोतल की जगह बिस्लेरी कहते हैं। फेलिस बिस्लेरी इटालियन कंपनी थी जिसने 1965 में मुंबई में सबसे पहले पानी की बोतलें बेचने का कार्य शुरू किया। पर एक मिनट, आप सोच रहे होंगे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपसे पार्ले के अन्य प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की बात कही थी, तो बिस्लेरी जो इटली की कंपनी थी उसका पार्ले से क्या लेना देना? तो आइए जानते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे चौहान बंधुओं की मेहनत के बदौलत पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बना। 1959 में बिस्किट के अलावा चौहान बंधुओं ने बरोड़ा बॉटलिंग कंपनी की नींव रखी, जिसे आगे चलकर पार्ले एग्रो का नाम दिया गया। अब तक सब ठीक चल रहा था। पार्ले बिस्किट, टॉफी और कैंडीज पूरे देश में सबके पसंदीदा थे, और वहीं पार्ले एग्रो सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने की तैयारी कर रही थी। पर किसी कारणवश 1961 में पार्ले कंपनी दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा बना पार्ले प्रोडक्ट्स, जो बिस्किट, कैंडीज और टॉफीज बनाती रही, जिसकी बागडोर कांतीलाल के बेटे विजय चौहान और उसके चचेरे भाइयों के हाथों में थी। और दूसरा हिस्सा बना पार्ले एग्रो, जिसकी बागडोर जयंती लाल के हाथों में थी। पार्ले एग्रो गोल्ड स्पॉट और ग्लूको कोला, जिसका नाम बाद में बदलकर पार्ले कोला भी रखा गया, उस पर काम कर रहे थे। जैसे ही पार्ले एग्रो एक अलग कंपनी बनी, जयंती लाल ने अपने बड़े बेटे मधुकर को इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। पार्ले एग्रो अपनी प्रगति की राह ढूंढ ही रहा था कि तभी 1964 में एक प्लेन क्रैश में मधुकर का निधन हो गया। पर कहते हैं ना कि हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। मधुकर की कमी अब पार्ले एग्रो को खलने लगी। मधुकर की जगह अब जयंती लाल के दूसरे बेटे रमेश को दी गई। रमेश चौहान के लिए शुरुआती दिन कुछ खास अच्छे नहीं रहे। सेल्स में गिरावट आने लगी थी, पर बहुत ही कम समय में रमेश कंपनी को बखूबी संभालने लगे। 1965 में जब फेलिस बिस्लेरी भारत में आई, उस समय पानी को खरीद कर पीना आम बात नहीं थी। कुछ ही समय में फेलिस बिस्लेरी को नुकसान होने लगा, तो उन्होंने कंपनी को बेचने का फैसला किया। बस फिर क्या था, रमेश चौहान ने फेलिस बिस्लेरी को खरीद कर पार्ले एग्रो में शामिल कर दिया। तो इस तरह बिस्लेरी अब पार्ले एग्रो का मुख्य अंग बन चुका था। एक इंटरव्यू में रमेश चौहान ने बताया कि क्योंकि पार्ले एग्रो सॉफ्ट ड्रिंक्स के उद्योग में थी, इसीलिए उन दिनों बिस्लेरी को पानी के बजाय सोडा ब्रांड बनाने के उद्देश्य से उन्होंने खरीदा था। 1975 से 1977 के बीच भारत में एमरजेंसी लागू की गई, जिसके कारण 1977 में कांग्रेस सरकार की जगह जनता पार्टी की सरकार बनी। इस समय तक पार्ले एग्रो का गोल्ड स्पॉट और लिम्का दोनों ही देश के कोने कोने में पहुंच चुका था, पर पार्ले एग्रो के इन दोनों प्रोडक्ट्स को टक्कर दे रहा था कोका कोला। पर किस्मत पार्ले एग्रो के साथ थी। जनता पार्टी ने सभी बड़ी विदेशी कंपनियों को अपने सारे शेयर्स 40% तक सीमित रखने के कानून को सख्त किया। पूरे विश्व में ये प्रचलित है कि कोका कोला की रेसिपी सीक्रेट है। जनता पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस ने 1970 के इंडियन पेटेंट एक्ट के तहत कोका कोला को नोटिस भेजा कि उन्हें अन्य सभी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों की तरह अपना सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का फॉर्मूला बताना होगा। ऐसा ना करने पर उन्हें भारत में अपने प्रोडक्ट्स बेचने की अनुमति नहीं मिल पाएगी। कोका कोला ने साफ कर दिया कि वे अपना सीक्रेट फॉर्मूला किसी को नहीं बताएंगे और भारत से उन्होंने विदा लिया। अब पार्ले एग्रो के रास्ते में कोई बड़ा प्रतियोगी यानी कॉम्पिटिटर नहीं था, इसीलिए उन्होंने गोल्ड स्पॉट और लिम्का के समांतर एक नया सॉफ्ट ड्रिंक थम्सअप का उत्पादन किया। जी हाँ, लिम्का और थम्सअप को हम सब के बीच में लाने वाले पार्ले एग्रो ही थे। रमेश चौहान की बिजनेस स्ट्रेटजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। थम्सअप को लोगों के बीच प्रसिद्ध करने के लिए उन्होंने कई तरीके आजमाए। मुंबई में जब भी फिल्मों की शूटिंग होती थी तो वे थम्सअप के कई क्रेट्स फ्री में भिजवा देते और डायरेक्टर्स इससे खुश होकर फिल्मों के कई सीन्स में थम्सअप को भी दर्शा दिया करते थे। 1980 के दौर में क्रिकेट देश का सबसे पसंदीदा खेल था, जिसे मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कई क्रिकेट टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर किया और थम्सअप को प्रमोट किया। कई बड़े क्रिकेटर्स को थम्सअप का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। इसके साथ साथ जावेद जाफरी और सलमान खान जैसे फिल्मी सितारे अपना फिल्मी करियर शुरू करने से पहले थम्सअप और लिम्का के एड्स में नजर आए। थम्सअप की लोकप्रियता के चलते पार्ले एग्रो ने माजा, जो एक मैंगो ड्रिंक था, और सिट्रा, जो एक क्लीन कूल ड्रिंक था, उसे मार्केट में प्रस्तुत किया। आप सोच रहे होंगे कि आज थम्सअप, माजा और लिम्का के बोतलों पर तो कोका कोला लिखा होता है। तो बात शुरू हुई 1984 से। पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट के वजह से दंगे हो रहे थे। उस दौर में राजीव गांधी देश के नए प्रधानमंत्री बने थे। दंगों के कारण कोई भी प्राइवेट कंपनी पंजाब में फैक्ट्री नहीं बनाना चाहती थी, जिसके वजह से कई लोग बेरोजगार थे। पंजाब अपनी उपजाऊ धरती के लिए जाना जाता था, तो राजीव गांधी को ऐसी कंपनी की तलाश थी जिसमें पंजाब की फसलों का उपयोग हो सके और जिससे किसानों को उनकी फसलों का सही दाम और कई लोगों को नौकरी भी मिल सके। इस परिस्थिति का फायदा पेप्सी कंपनी ने उठाया। पेप्सी कंपनी ने भारतीय सरकार के सामने एक प्रपोजल रखा, जिसमें उन्होंने पंजाब एग्रो और वोल्टास के साथ मिलकर पोटैटो चिप्स और टोमेटो केचप की फैक्ट्री बनाने की बात की, पर शर्त ये थी कि उन्हें अपने प्रोडक्ट पेप्सी, जो एक सॉफ्ट ड्रिंक है, उसे भारत में बनाने और बेचने की अनुमति मिले। कुछ सालों की पार्लियामेंट डिबेट के बाद आखिरकार पेप्सी को हरी झंडी मिल गई और इस तरह पेप्सी कंपनी ने 1990 में पेप्सी, सेवन अप और मिरिंडा को भारत में बेचना शुरू किया। इसी तरह के पेप्सी के एड्स करते हुए कई फिल्मी सितारे और क्रिकेटर्स टीवी पर दिखाई देने लगे। अब पेप्सी पार्ले एग्रो के थम्सअप के लिए एक बड़ा प्रतियोगी था। 1991 में जब पीवी नरसिम्ह राव देश के प्रधानमंत्री बने और उन्हीं के कार्यकाल में मनमोहन सिंह, जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कई इकोनॉमिक लॉज में बदलाव किए। 1992 में एक और बदलाव हुआ जिसमें शेयर्स के 40% तक के प्रतिबंध को हटा दिया गया। इन बदलावों का सीधा फायदा कोका कोला को हुआ। कोका कोला ने भारत में वापसी करी, पर पूरे देश में फिर से फैक्ट्रीज लगाना थोड़ा मुश्किल था और इसमें काफी समय भी लगता। इसीलिए कोका कोला ने पार्ले एग्रो की कई फ्रेंचाइजीज को पार्ले एग्रो छोड़कर कोका कोला में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। उस समय पार्ले एग्रो में कुल 62 बॉटलर्स थे, जिसमें से सिर्फ 4 ही पार्ले एग्रो के अपने थे, बाकी सब फ्रेंचाइजीज थे। हर हफ्ते कोई ना कोई पार्ले एग्रो की फ्रेंचाइजी छोड़कर कोका कोला में शामिल हो रहा था। कोका कोला की वापसी ने थम्सअप की ही नहीं बल्कि पूरे पार्ले एग्रो की मुश्किलें बढ़ा दी थी। किसी का साथ ना मिलने के कारण 1993 में रमेश चौहान ने बिस्लरी को छोड़कर बाकी सभी बॉटलर्स कोका कोला को $60 मिलियन में बेच दिए। इसमें थम्सअप, लिम्का, माजा और गोल्ड स्पॉट जैसे बड़े नाम थे, इसीलिए अब थम्सअप, माजा और लिम्का की बोतलों में कोका कोला नामांकित मिलता है। इसी समय पार्ले एग्रो के भी दो हिस्से हो गए। एक बना पार्ले एग्रो जो रमेश चौहान के भाई प्रकाश चौहान संभाल रहे हैं, और दूसरा पार्ले बिस्लरी जिसे रमेश चौहान स्वयं संभाल रहे हैं। इसका मतलब 1928 में जिस पार्ले कंपनी की शुरुआत हुई थी उसके आज कुल 3 हिस्से हैं। पहला पार्ले प्रोडक्ट्स, जिसके प्रचलित प्रोडक्ट्स हैं पार्ले जी, मोनैको, मैंगो बाइट, मेलेडी, क्रैक जैक, हाइड एंड सीक और न जाने कितने ही। दूसरी कंपनी है पार्ले एग्रो, जिसके प्रसिद्ध प्रोडक्ट्स हैं फ्रूटी, एपीफिज, बेली सोडा और अन्य कई। और तीसरी है पार्ले बिस्लरी, जिसे बिस्लरी इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। इसके प्रोडक्ट्स हैं बिस्लरी मिनरल वाटर, बिस्लरी सोडा, फोंजो और अन्य कई। ये थी कहानी पार्ले के कुछ और प्रोडक्ट्स की। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो मैं विनीत कुकरेती विदा लेता हूँ और फिर लौटूंगा जेन्युइन स्टूडियोज की पेशकश जाने माने नामों की अनजानी बातें के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।